ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। निजी शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर लगाए गए 3% क्षमता कर को हटाने का सरकार का निर्णय। प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन थापा ने फैसले का किया स्वागत। तैयार गारमेंट उद्योग के विकास में सरकार के सहयोग करने की प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की प्रतिबद्धता। समस्याग्रस्त सहकारी प्रबंधन समिति ने 2 सहकारी संस्थाओं के 125 बचतकर्ताओं की जमा राशि लौटाई। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यूक्रेन को 69 करोड़ अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराएगा ऋण। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने निजी शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर लगाए गए 3% समता कर को वापस लेने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि इस व्यवस्था के लागू होने से आम नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने और निराशा बढ़ने की आशंका को देखते हुए फिलहाल समता कर को हटाने का निर्णय किया गया है। प्रधानमंत्री शाह ने बताया कि वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वागले के साथ परामर्श के बाद फिलहाल शिक्षा समता शुल्क और स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नहीं करने का निर्णय किया गया है। उन्होंने कहा कि 3% समता कर का उद्देश्य दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों के नागरिकों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, दलित पिछड़ा वर्ग पर रहने वाले तथा आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को सहयोग देना, स्वास्थ्य बीमा का विस्तार करना तथा इसके लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाना था। उनका कहना था कि कर के दायरे का विस्तार कर अर्थव्यवस्था का अधिक व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लाई गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्षमता कर को लेकर नागरिकों की प्रतिक्रिया पर सरकार ने गंभीर ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की भावनाओं और मांगों को सुनते हुए आगे बढ़ने तथा क्षमतामूलक समाज के निर्माण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन कुमार थापा ने चालू आर्थिक वर्ष से शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर लगाए गए 3% समता कर को हटाने के सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से सभापति थापा ने कहा कि यह व्यवस्था अनुपयुक्त है और उनकी पार्टी शुरू से ही इसका विरोध करती रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य कोई विलासिता की वस्तु नहीं है। प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के सभापति थापा ने यह भी कहा कि समता कर हटाने के सरकार के निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का विधिवत पालन किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि सरकार देश में तैयार गारमेंट उद्योग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आज प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद कार्यालय में तैयार गारमेंट उद्योग संघ के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार इस उद्योग से जुड़े उद्यमियों और व्यवसायियों के हितों की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। तैयार गारमेंट उद्योग से जुड़े व्यवसायियों के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री शाह ने संबंधित मंत्री को तत्काल टेक्सटाइल एंड क्लोदिंग डेवलपमेंट काउंसिल के गठन के निर्देश दिए। व्यवसायियों ने उम्मीद जताई कि इस काउंसिल के गठन से देश में उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित तैयार के निर्यात को बढ़ावा देने और आयात के बेहतर प्रबंधन में सुविधा होगी। उद्योगपतियों और व्यवसायियों की मांग के अनुरूप प्रधानमंत्री ने बंद पड़े उद्योगों को शीघ्र पुनः संचालित करने के लिए उद्योग मंत्रालय को भी आवश्यक निर्देश दिए। समस्याग्रस्त सहकारी प्रबंधन समिति ने लालीगुरा सहकारी और तपाई हाम्रो सहकारी के छोटे बचतकर्ताओं की जमा राशि वापस कर दी है। समिति के अनुसार लालीगुरा सहकारी के 35 तथा तपाई हाम्रो सहकारी के 90 बचतकर्ताओं को उनकी जमा राशि लौटाई गई है। सरकार ने कहा है कि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाओं से ऋण वसूली के माध्यम से प्राप्त राशि से ही प्रभावित बचतकर्ताओं को उनकी जमा राशि वापस की गई है। समिति ने बताया कि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाओं से ऋण वसूली और उनकी संपत्तियों के प्रबंधन से प्राप्त धनराशि के आधार पर संबंधित सहकारी संस्थाओं के बचतकर्ताओं को प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अनुसार लगातार उनकी जमा राशि लौटाने की प्रक्रिया जारी है। प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की संसदीय सुनवाई आगामी 12 और 13 श्रावण को होगी। संसदीय सुनवाई समिति की आज हुई बैठक ने निर्वाचन आयोग के प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मान बहादुर कार्की तथा प्रस्तावित आयुक्त डॉ राजीव सुब्बा और गुरु प्रसाद वागले की संसदीय सुनवाई 12 और 13 श्रावण को करने का निर्णय लिया गया है। समिति ने यह भी बताया कि संसदीय सुनवाई से पहले प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त और आयुक्तों के विरुद्ध दर्ज शिकायतों पर चर्चा की जाएगी और उनकी सुनवाई की जाएगी। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *14#डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। नेपाल कानून आयोग ने कानून प्रारूप दिशा निर्देश कानून तर्जुमा दिग्दर्शन सार्वजनिक किया है। कानून न्याय तथा संसदीय मामलों की मंत्री शोभिता गौतम ने आज इसका विमोचन किया। उन्होंने कहा कि इस दिशा निर्देश में कानून निर्माण की भाषा, संरचना और विषय वस्तु को समाहित किया गया है, जिससे कानून से जुड़े सभी पक्षों को लाभ मिलेगा। संघ प्रदेश और स्थानीय स्तर पर बनने वाले कानूनों की गुणवत्ता बढ़ाने में भी यह दिशा निर्देश उपयोगी सिद्ध होगा। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने नागरिक आंदोलन के अग्रणी डॉ देवेंद्र राज पांडे के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वर्गीय पांडे का जीवन मुख्यतः स्वतंत्रता, अधिकार और नागरिक आंदोलन के लिए समर्पित रहा। उन्होंने नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना एवं पुनर्स्थापना तथा विभिन्न आंदोलनों में नागरिक नेता के रूप में निभाई गई उनकी भूमिका को सदैव स्मरणीय बताया। राष्ट्रपति का शोक संदेश उनके प्रेस सलाहकार किरण पोखरेल और प्रमुख स्वकीय सचिव अवज्ञा पौड़ेल ने विशाल नगर स्थित पांडे के निवास पर जाकर परिवार को सौंपा। कैंसर से पीड़ित डॉ पांडे का निधन सावन 1 गते अपने निवास पर हुआ था। कृषि, वन तथा वातावरण मंत्री गीता चौधरी और उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री गौरी कुमारी के बीच दोनों मंत्रालयों से संबंधित कार्यों में प्रभावी समन्वय बढ़ाने पर चर्चा हुई। कृषि मंत्रालय में आज हुई बैठक में खाद्यान्न फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होने के बाद उसके प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी पर विचार विमर्श किया गया। कर्मचारी के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने के आरोप में परसा जिले की कालिका माई गांवपालिका वार्ड नंबर 3 के अध्यक्ष संजय पटेल को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। गांवपालिका में कार्यरत एक कर्मचारी के साथ कार्यालय के भीतर मारपीट करने की घटना में उन्हें अभद्र व्यवहार के मामले में गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरिया ने दी। काठमांडू के कीर्तिपुर नगरपालिका 1 स्थित ट्यांगला फाट में आज सुबह एक कार में अचानक आग लगने से उसमें मौजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई। काठमांडू उपत्यका ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता पुलिस अधीक्षक नरेश राज सुवेदी ने बताया कि जलती हुई कार से एक पुरुष का शव बरामद किया गया, जो पूरी तरह जल चुका था। तनहू जिले की व्यास नगर पालिका 7 स्थित कलिश्ती पुल पर आज एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 15 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में बस चालक की हालत गंभीर बताई गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने यूक्रेन को लगभग 69 करोड़ अमेरिकी डॉलर 50 करोड़ एसटीआर की नई ऋण किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय IMF के कार्यकारी बोर्ड द्वारा यूक्रेन के आर्थिक सुधार कार्यक्रम की समीक्षा पूरी होने के बाद लिया गया। IMF ने कहा कि रूस के साथ जारी युद्ध के बावजूद यूक्रेन ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और आवश्यक सुधारों को आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। नए ऋण राशि का उपयोग देश के बजट को समर्थन देने, आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं को जारी रखने और व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में किया जाएगा। इस नई किस्त के साथ मार्च 2023 में स्वीकृत लगभग 15.5 अरब अमेरिकी डॉलर के आईएमएफ सहायता कार्यक्रम के तहत यूक्रेन को अब तक जारी की गई कुल राशि और बढ़ गई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निजी शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर लगाए गए 3% क्षमता कर को हटाने को सरकार का निर्णय, मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन थापा ने फैसले का किया स्वागत। तैयार गारमेंट उद्योग के विकास में सरकार के सहयोग करने की प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की प्रतिबद्धता। समस्याग्रस्त सहकारी प्रबंधन समिति ने 2 सहकारी संस्थाओं के 125 बचतकर्ताओं की जमा राशि लौटाई और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ यूक्रेन को 69 करोड़ अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराएगा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।